16 अक्टूबर दिन मंगलवार, दिन भर मैं हूं रेहान फजल। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो जमाल खशोगी के गायब होने के सिलसिले में सऊदी अरब पहुंचे। क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप?
I just spoke with the king of Saudi Arabia who denies any knowledge of...
इलाहाबाद अब जाना जाएगा प्रयागराज के नाम से। देखेंगे किस तरह अमेरिका के न्यू जर्सी में मनाए जाते हैं नवरात्र।
नवरात्रि में बहुत सारा बिजी रहते हैं, हम पूरे दिन वर्क रहता है, चनिया चोली मांगते हैं और केड़िया कुर्ता सलवार और सब कुछ, घाघरा कच्छी वर्क और वो सब ज्यादा चलते हैं अभी। ब्लाउज की जो भी पैटर्न बोलो वो सब पैटर्न हम करते हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए गुरप्रीत सैनी से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर सऊदी के पत्रकार जमाल खाशोजी की गुमशुदगी की वजह से दबाव बढ़ने लगा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आज सऊदी अरब पहुंचकर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अनुसार उन्होंने सऊदी के प्रिंस के सामने लापता पत्रकार के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। खाशोजी 2 हफ्ते से लापता हैं। अंतिम बार उन्हें इस्तानबुल स्थित सऊदी के वाणिज्यिक दूतावास में जाते हुए देखा गया था। चीन ने पहली बार शिनजियांग प्रांत में रहने वाले करीब 10 लाख विगर मुसलमानों के लिए दोबारा शिक्षा की व्यवस्था से जुड़ी जानकारियां साझा की हैं। शिनजियांग की राज्य सरकार के प्रमुख शोहरत जाकिर ने सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ को एक इंटरव्यू में बताया कि दोबारा शिक्षा से जुड़े इन कैंपों का मकसद चरमपंथ पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से वैकल्पिक शिक्षा से जुड़ा कैंप है जहां लोगों को अच्छा खाना, टीवी और एसी की सुविधा भी दी जाएगी। हालांकि मानवाधिकार समूहों ने इन कैंपों को एक तरह का यातनागृह बताया है। चीन में मानवाधिकारों से जुड़ी वरिष्ठ शोधकर्मी माया वेंग ने चीन सरकार के दावे को खारिज किया है। उन्होंने बीबीसी से कहा,
These explanations just simply defy logic. I mean, 1 million people are estimated to be in these facilities.
चीन सरकार का ये विवरण वास्तविकता से परे लगता है। मेरा मतलब है कि चीन की सरकार के अनुसार वे 10 लाख लोगों को ये सुविधाएं दे रहे हैं और इतने लोगों ने इसके बदले में अपनी आज़ादी अपनी इच्छा से गंवाना मंजूर कर लिया। ये थे चीन में मानवाधिकार समूह से जुड़ी एक शोधार्थी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के भ्रष्टाचार निरोधी दल ने वामपंथी पार्टी के प्रमुख जीन लूक मेलेनखोन के घर और पार्टी के मुख्यालय पर आज छापा मारा। पुलिस ने कुछ अन्य अधिकारियों के घर पर भी छापे मारे। ये छापेमारी चुनाव के वक्त गलत तरीके से फंड जुटाने और पार्टी के साथ जुड़े लोगों को यूरोपीय संघ में नौकरी दिलवाने जैसे झूठे वायदों के आधार पर मारी गई। अपने समर्थकों से घिरे मेलेनखोन ने इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा, हम ईमानदार लोग हैं, हमने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और हमारे पास कुछ छिपाने के लिए भी नहीं है। हम जो भी करते हैं वो सार्वजनिक है। दरअसल वे हमें इन हथकंडों के जरिए डराना चाहते हैं, लेकिन मैं हार मानने वालों में नहीं हूँ। मैं डरा नहीं हूँ और ना ही मेरे साथी डरे हैं। ये थे फ्रांस में वामपंथी पार्टी के नेता मेलेनखोन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कांगो गणराज्य में भूख का स्तर पिछले साल के मुकाबले 2 गुना हो गया है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र और कांगो सरकार की ताज़ा रिपोर्ट में निकल कर आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कांगो में 5 साल से कम उम्र के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जबकि कांगो की कुल आबादी का 1/5 कुपोषित है और इनके पास पर्याप्त खाना नहीं है। सबसे बुरे हालात कांगो के पूर्वी इलाके किवू और इतुरी में हैं, जहाँ हिंसा के कारण हजारों लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा है। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी ऑडी पर 90 करोड़ डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इस कंपनी पर आरोप है कि उन्होंने दुनिया भर में बेची गई अपनी डीजल कारों में जो इंजन लगाया था उसमें अवैध उत्सर्जन सॉफ्टवेयर लगाया गया था। इस साल की शुरुआत में फॉक्सवैगन कंपनी पर भी इतना ही जुर्माना लगाया जा चुका है। ऑडी फॉक्सवैगन का ही हिस्सा है। ऑडी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपर्ट स्टैडलर को इसी साल जून में डीजल उत्सर्जन घोटाले के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी के गायब होने के मामले में अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सऊदी हुक्मरान ये कबूल करने की तैयारी में हैं कि खशोगी की सऊदी दूतावास में पूछताछ के दौरान मौत हो गई थी। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी बादशाह से बात की है। उधर अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सऊदी अरब पहुंच गए हैं और शाही परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
सोमवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी बादशाह शाह सलमान से फोन पर बात की और उसके बाद पहली बार ये साफ किया कि सऊदी पत्रकार जमाल खशोगजी का कत्ल हो गया है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा,
I just spoke with the king of Saudi Arabia who denies any knowledge of what took...
मैंने सऊदी अरब के शाह सलमान से बात की और वो तो इस मामले में किसी जानकारी से साफ इनकार कर रहे हैं। खशोगजी को कत्ल करने के पीछे क्या पता किसी बदमाश गिरोह का भी हाथ हो सकता है, हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर इस मामले में सऊदी अरब की गलती साबित हो जाती है तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सऊदी अरब गए हैं, जहां उन्होंने सऊदी बादशाह शाह सलमान और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि माइक पोम्पियो ने सऊदी बादशाह से मुलाकात में उनका शुक्रिया अदा किया कि वो खशोगजी मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। जमाल खशोगजी तुर्की में अंकारा स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास से 2 अक्टूबर से गायब हैं। अभी तक इसके सबूत नहीं मिले हैं कि उनके साथ क्या हुआ। सऊदी अरब का अब तक कहना रहा है कि खशोगजी दूतावास से सही सलामत बाहर निकल गए थे, लेकिन अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सऊदी अरब के हुक्मरान ये कबूल करने वाले हैं कि खशोगजी की इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में पूछताछ के दौरान मौत हो गई थी। याद रहे, अब तक सऊदी हुक्मरान खशोगजी की गुमशुदगी को लेकर किसी भी तरह जुड़े होने से साफ इनकार करते रहे थे। खशोगजी कुछ समय से अमरीका में ही रहते थे और वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में लेख लिखते थे, जिनमें वो अक्सर सऊदी हुक्मरानों की आलोचना किया करते थे। अब इस मामले में दुनिया भर में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान पर सवाल उठ रहे हैं। अमरीका में भी इस मामले की हर तरफ चर्चा जारी है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में अमरीका और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और सऊदी अरब ने अमरीका से अरबों डॉलर का हथियार भी खरीदने का समझौता किया है। ट्रंप प्रशासन पर अमरीकी कांग्रेस के कई सदस्यों और सेनेटरों का दबाव भी है कि अगर सऊदी हुक्मरान इस मामले में सम्मिलित पाए गए तो सऊदी अरब के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ऐसी खबरें आने के बाद कि सऊदी हुक्मरान अब ये मानने की तैयारी में लग गए हैं कि खशोगजी की सऊदी दूतावास में ही मौत हो गई थी। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर मार्को रूबियो कहते हैं, अगर ऐसा है तो लाश कहाँ है? खशोगी के परिवार को क्यों नहीं सूचित किया गया और पिछले 8-9 दिनों से सऊदी क्यों कह रहे थे कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते? देखिए, सऊदी हमारे सहयोगी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वहां मानवाधिकारों के हनन के मामलों पर आंखें मूंदे रहें। सेनेटर मार्को रूबियो के शब्द। सऊदी अरब ने यह धमकी भी दी है कि अगर उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए तो वो भी उसका जवाब देगा, और इस सिलसिले में कई अरब देशों जैसे संयुक्त अरब अमारात, मिस्र और बहरीन ने सऊदी अरब की हिमायत में बयान भी दिया है। मध्य पूर्व के जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब के हुक्मरानों की ये कोशिश लगती है कि इसे एक ऐसे मामले के तौर पर पेश किया जाए जिसमें हुक्मरानों का कोई किरदार नहीं था, बल्कि निचले स्तर के अधिकारियों ने अपने तौर पर ही यह सब कुछ कर डाला। लेकिन जानकार ये मानने को तैयार नहीं है कि खशोगजी के मामले में कोई भी कदम बगैर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इजाजत के उठाया जा सकता था। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब कुछ खबरें भारत से। स्वामी अयप्पा के सबरीमला मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों पर तनाव बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं से कह रही हैं कि वो जहां से आई हैं वहीं वापस चली जाएं। ये तब हो रहा है जब राज्य के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की संभावना से साफ इनकार किया है। विजयन का वक्तव्य उस समय आया है जब ट्रावणकोर देवासम बोर्ड और पुजारियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता वार्ता विफल हो गई है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
सबरीमला में तनाव बढ़ने की आशंका की आज झलक दिखाई दी। आज सुबह जब कई महिलाएं कार और बस में सबरीमला के एक आधार शिविर निलकल के पास जाने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें महिलाएं ही रोकती दिखाई दी। जिन महिलाओं को रोका गया उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। जिन महिलाएं ने दूसरे महिलाओं को रोका उन्होंने महिला पत्रकारों को भी रोका। एक के साथ झड़प भी हुई, लेकिन जब एक दूसरे महिला रिपोर्टर निलकल पहुंचे तो उन्हें किसी ने नहीं रोका। निशा मनी उन महिलाओं में से एक हैं जो दूसरे महिलाओं को वापस भेज रही थी। निशा मनी ने बीबीसी तमिल की प्रमिला कनन को बताया,
हम
हर महिला को रोक रहे हैं जो बस में आ रही हैं। हम उनको जबरदस्ती बस से उतार कर हमारा रुख समझा रहे हैं। हम वर्षों से सबरीमला की परंपरा को मानते आए हैं। जो भी हो, हम हमारे नियमों के मुताबिक ही चलेंगे। ये थे निशामणि के शब्द। दरअसल जो महिलाएं सबरीमला में जाना चाह रही हैं, उन पर कई तरह का दबाव डाला जा रहा है। अय्यप्पा धर्म सेना के राहुल ईश्वर ने बीबीसी को बताया कि गुरुवार को उनके पुरुष और महिला प्रदर्शनकारी क्या करेंगे। प्रदर्शनकारी तीनों आधार शिविरों के पास जमीन पर लेट जाएंगे। अगर किसी महिला को सबरीमला जाना है तो उनको पुरुष और महिलाओं के छाती पर पैर रख कर जाना होगा। ये तो गांधी का तरीका है जो हम मान कर चल रहे हैं, और हम इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ही हमें कहा है। ये थे राहुल ईश्वर के शब्द। दूसरी तरफ केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका नहीं डालेगी। विजयन पहले भी ये कह चुके हैं कि राज्य सरकार ही अपने याचिका में कहा था कि 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में जाने से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से कहा,
साधारण नरक विश्वास भागमाई,
हम ये स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए कोई मौका नहीं देगी। केरला में किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी की स्वतंत्रता पर कोई रोक लगाएं। ये थे पिनाराई विजयन के शब्द। कल मलयालम महीने का पहला दिन है और परंपरा के तहत सबरीमला के मंदिर में 5 दिन पूजा होती है। कल मंदिर के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन कल सिर्फ मंदिर को साफ किया जाएगा। पूजा गुरुवार को होगी। अगले 24 घंटों में किस तरह तनाव बढ़ेगा, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। इमरान कुरैशी, बीबीसी, पतनमतिट्टा, केरला।
सवाल उठता है कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को खुश होना चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विरोध करने में आगे आगे दिखाई दे रही हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, ये जानने की कोशिश की है कमलेश मथेनी ने अपनी इस रिपोर्ट में।
कभी सबरीमला, कभी शनि शिंगणापुर, तो कभी तीन तलाक। एक तरफ महिलाओं को समान अधिकार और न्याय दिए जाने की मांग, तो दूसरी तरफ उन्हीं अधिकारों का विरोध। इस समर्थन और विरोध में सिर्फ महिला और पुरुष आमने सामने नहीं थे, बल्कि खुद महिलाएं भी बड़ी संख्या में विरोध पर निकली थीं। अब 17 अक्टूबर को सबरीमला मंदिर के द्वार खुलने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट हर उम्र की महिला के प्रवेश का फैसला सुना चुका है। केरल में जबरदस्त विरोध है और यहाँ भी प्रदर्शनकारियों में हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। उनके हाथों में झंडे हैं और भगवान अय्यप्पा की तस्वीर। महिलाओं के पक्ष में आए इस फैसले का खुद महिलाएं ही विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि सालों पुरानी परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए, इससे भगवान अय्यप्पा का अपमान होगा। अक्सर अपने अधिकारों के मामलों में महिलाएं बटी हुई नजर आती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? अपने ही अधिकारों की बात पर आखिर महिलाएं साथ होने की बजाय आमने सामने क्यों होती हैं? किसी भी मुहिम पर इसका क्या असर पड़ता है, यही जानने के लिए हमने बात की सामाजिक कार्यकर्ता कमला भसीन से, जो इस विरोध की गहराई को कुछ अलग तरह से देखती हैं।
महिलाओं के विरोध में नहीं है, ये लोग भी, हम औरतें भी पितृसत्तात्मक होती हैं, हो सकती हैं। हमने बचपन से यही सीखा है। हम चांद पर तो पैदा नहीं हुए, हम इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिस हिंदुस्तान में कहा कि साहब, कुछ लोगों ने कहा कि औरतें नापाक हैं, अपवित्र हैं, वो अंदर नहीं जा सकती मंदिरों में, मस्जिदों में।
ये थे सामाजिक कार्यकर्ता कमला भसीन के शब्द। सार्वजनिक मसलों के अलावा अगर घरों में देखें तो ये आम धारणा है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं। असल जिंदगी से लेकर टीवी तक पर सास बहू की लड़ाई के चर्चे रहते हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे इससे पूरी तरह इनकार करती हैं। वह कहती हैं,
देखिए, ये एक बहुत पुराना क्लिशे है कि महिला महिला की दुश्मन है। सच्चाई ये है कि ये सारे मतभेद पुरुषों के बीच में भी होते हैं, पुरुषों में भी बटे हुए हैं लोग, लेकिन हमेशा औरतों के बीच में मतभेद को बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से हाईलाइट करके कहा जाता है कि देखो औरतें लड़ रही हैं, तो ये मतभेद सामान्य है।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे। क्या हजारों हजार महिलाएं सिर्फ पितृसत्ता के प्रभाव में सड़क पर उतरती हैं, और क्या ये स्वतः स्फूर्त है? इसके जवाब में गैर सरकारी संस्था भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई एक और पक्ष को उजागर करती हैं। तृप्ति देसाई और उनके सहयोगियों ने शनि शिंगणापुर में प्रवेश के लिए अभियान चलाया था और अब वह सबरीमला मंदिर में भी जाने वाली हैं। तृप्ति देसाई कहती हैं,
तो कहीं ना कहीं महिलाएं अभी इक्वल दर्जा जो है वो महिलाओं को देना पड़ेगा, इसलिए ये धर्म के तथाकथित जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये लोग जो है वो कुछ महिलाओं को धर्म का नाम देकर जो है वो भड़का रहे हैं। तो इनका उद्देश्य यही है कि लोगों के मन में जो है वो कहीं जो महिलाओं के बाजू से जो एक पॉजिटिव जो निर्णय है वो निगेटिव करना।
लेकिन महिलाओं को एक वर्ग के रूप में संगठित कैसे किया जा सकता है? कमला भसीन के शब्दों में ये इस तरह संभव है, महिलाओं को एकजुट करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। जब नारीवाद इतना फैल जाएगा और हम एक दूसरे की मदद करने लगेंगे तब ये संभव होगा। कमलेश मठेनी, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में इसे औपचारिक स्वीकृति दे दी और अब हर जगह नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस मुद्दे ने जहां एक ओर सियासी गर्मी पैदा कर दी है, वहीं इसे लेकर बौद्धिक जगत में भी कुछ मायूसी देखी जा रही है। सुनिए समीर आत्मन मिश्र की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद में 2 दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अब वो इस शहर में तभी आएंगे जब इसका नाम प्रयागराज हो जाएगा। लेकिन ये काम इतनी जल्दी होगा ऐसी उम्मीद लोगों को नहीं थी। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया और कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकृति दे दी। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया,
इलाहाबाद जो है उसका नाम प्रयागराज हो ये अनुमोदन के लिए आया था। कैबिनेट के हर मेंबर ने अपनी खुशी भी जताई और इसका नाम भी आज से प्रयागराज कहलाया जाएगा और इसके लिए जो भी और प्रक्रिया है, कुछ केंद्रीय इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं, उन सबको अब चिट्ठियां लिखी जाएगी जिससे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इससे भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रचार प्रसार होगा और कुंभ में आने वाले जो लोग हैं उसमें भी श्रद्धालुओं को भी इसमें उत्साह और उन लोगों को भी खुशी होगी।
सरकार का कहना है कि इसके लिए साधु संतों और धर्माचार्यों के अलावा स्थानीय नागरिकों ने भी आग्रह किया था। साधु संतों ने तो इस कदम का भरपूर समर्थन भी किया है, लेकिन सियासी जगत में सरकार के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। वहीं बौद्धिक जगत में ये चर्चा भी जोरों पर है कि प्रयागराज और इलाहाबाद ये दोनों शहर एक साथ सह अस्तित्व में रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हेरम्ब चतुर्वेदी कहते हैं,
ये जो शहर है जिसे आप इलाहाबाद कह रहे हैं, हम इलाहाबाद कह रहे हैं, ये वाकई 1583 में अकबर मां किला बनवाता तो इसका विकास ही ना होता
जी।
तो चौधरी ने बनवाता वो 2 बड़े बांध ना, बख्शी बांध, उसका वीर बख्शी बनवा रहा बैठ के, और दूसरा ये जमुना का बांध, तो कहाँ इलाहाबाद बस जाता।
वहीं कुछ लोग इस बात से भी हैरान हैं कि क्या विश्व प्रसिद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम भी अब बदल जाएगा। हालांकि सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों में इसे लेकर कई सवाल भी हैं। ऐसे ही कुछ छात्रों से हमने शहर का नाम बदलने के सवाल पर बात की।
प्रयागराज हमारे चिंतन की मूल परंपरा थी और यह हमें धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ती है। नाम परिवर्तन करने से जहाँ तक मूलभूत तो सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए तो स्टेशन, कोर्ट, पता, स्थान इत्यादि स्थानों पे परिवर्तन हो जाएंगे।
इलाहाबाद नाम का बदल कर प्रयागराज किया गया है, कहीं ना कहीं वो धार्मिक सांस्कृतिक महत्व को अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर किया गया है। ये स्वागत योग भी है एक तरह से, लेकिन अगर विकास कार्यों को देखा जाए तो उस पर भी, और जो संस्थाएँ भी हैं जिसका कईयों का नाम इलाहाबाद से संबंधित है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या किसी कोई हो, तो उसके लेकर क्या इनका विचार रहता है, क्या रवैया रहता है, उस हिसाब से विकास को भी देखकर इनको भी कदम उठाने होंगे कि प्रयागराज का महत्व को बरकरार रखा जाए।
जी, इलाहाबाद का नाम पहले प्रयागराज था, कोई सरकार ने नया काम नहीं किया है, बस जो है आधिकारिक रूप से एक इन्होंने जो है इसको प्रयागराज नाम का दर्जा दे दिया है। जहाँ तक विकास के नज़रिए से देखा जाए तो नाम बदलने से विकास नहीं हो सकता है। जब से ये सरकार आई है केवल जो है नाम परिवर्तन कर रही है।
बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, करोड़ों की स्टेशनरी सरकार को इस पे व्यय करना होगा। यहाँ तक कि इलाहाबाद के वासी इस बात को लेकर परेशान होंगे कि उनका आधार कार्ड कैसे चेंज होगा, पैन कार्ड कैसे चेंज होगा, एक प्रमाण पत्र को लेकर के समस्या उत्पन्न होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अब नाम क्या होगा?
बहरहाल सरकार अपने इस फैसले की वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। विपक्षी विरोध कर रहे हैं, साधु संत प्रसन्न हैं तो कुछ लोग मायूस भी, लेकिन इलाहाबाद के रहने वाले बहुत से लोग इसी उधेड़ बुन में हैं कि शहर का नाम बदलने से क्या उसकी दशा भी बदल जाएगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
भारत प्रशासित कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन चरमपंथी मनान बशीर वाणी की मौत के बाद उन पर सियासी बयानबाजी जारी है। PDP जहां मनान को हिंसा का शिकार बता रही है, वहीं NCPDP के बयानों को ड्रामा बता रहा है। क्या कहते हैं दोनों दलों के नेता और विश्लेषक बयानबाजी पर, बता रहे हैं माजिद जहांगीर श्रीनगर से।
उत्तरी कश्मीर के हिंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के चरमपंथी मनान बशीर वानी को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत के 6 दिन बाद PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वानी की मौत को कश्मीर में न खत्म होने वाली हिंसा का शिकार बताया है। वहीं NC के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान को मगरमच्छ के आंसू बताते हुए कहा है कि अब ये आंसू बहाना कुछ काम नहीं आ सकते हैं। हालांकि PDP के नेताओं का कहना है कि किसी पर उंगली उठाने से मसले का हल नहीं। PDP के प्रवक्ता मोहम्मद रफी मीर,
अगर यहाँ आप सियासी हालात पर नजर डालेंगे और तमाम सियासी पार्टियों के माजी पर भी नजर डालेंगे
जी,
आप कहीं ना कहीं किसी फर्द किसी लीडर पर उंगली तो उठा सकते हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारी प्रेसिडेंट ने बयान दिया कि वक्त आ गया है, इतने खून खराबे के बाद ये सोचने का वक्त आया है कि कौन सी चीज है जो नौजवान को इसकी तरफ रागिब कर रही है, कैसे हम इस ट्रेंड को अरेस्ट कर सकते हैं, और उनका एक रोल होगा अगर यहाँ पे सियासी मसला है जो नौजवान चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक हल हो।
उधर NC के नेता महबूबा मुफ्ती पर कश्मीर के हालात खराब कराने का सारा मलबा गिराते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या गलत कहा।
ये जो उमर साहब ने कहा तो वो तो अपनी जगह पर दुरुस्त है, फैक्चुअली और प्रिंसिपली अगर आप देखें तो वो सच है कि बाबा जी ने और उसकी पार्टी ने उसके वालिद मुहतरम मरहूम ने BJP के साथ कोलिशन नहीं की होती, शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। और उस वक्त उमर साहब ने चूंकि उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था तो कहा था कि आप ऐसा मत करें जिससे जम्मू कश्मीर के लोग हितों को नुकसान पहुंचे, वो तो हुआ। और उस कॉन्टेक्स में जो उमर साहब ने कहा ठीक है, उसमें कोई दो राय।
वानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में PhD के छात्र थे और बीते जनवरी को वानी की रफेल लहराते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई थी, जिस तस्वीर में उन्होंने चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने का ऐलान किया था। कश्मीर में वानी की मौत पर सामने आने वाले भारत समर्थित राजनीतिक पार्टियों के बयानों पर कश्मीर के विश्लेषक कहते हैं कि ये महज राजनीति है। पत्रकार और विश्लेषक हारून ऋषि,
इस कॉन्फ्लिक्ट में सारे जो स्टेक होल्डर्स है उनकी अक्सरियत सियासती करते हैं, तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी इस सिचुएशन में अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए बयान जारी करते हैं।
वानी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में कायम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ जो कथित तौर पर वानी के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में गायबाना नमाज जनाजा अदा कर रहे थे, देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। MU में कश्मीरी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय HRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ उठाया है। कश्मीरी छात्रों पर मामला दर्ज करने के बाद ये खबरें सामने आई हैं कि अगर 2 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामला वापस नहीं लिया गया तो MU से करीब 1200 कश्मीरी छात्र कश्मीर वापस लौटेंगे। खबरों के मुताबिक इन छात्रों ने 17 अक्टूबर तक दर्ज मामले को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
अमेरिका में पिछले कई वर्षों की तरह इस नवरात्रि के सीजन में भी हजारों लोग आस्था के साथ पूजा और गरबा दांडिया नृत्य के रंगारंग कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। न्यूजर्सी में इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन और उनमें भाग लेने वाले लोग कैसी तैयारियां करते हैं और इन सब पर कितना खर्च किया जाता है, इस पर नजर डाल रहे हैं सलीम रिजवी।
नवरात्रि के पावन त्यौहार के सीजन में अमेरिका के कई शहरों में अब गरबा और डांडिया के कार्यक्रमों का बहुत से भारतीय मूल के लोग साल भर इंतजार करते हैं। न्यूजर्सी और न्यूयॉर्क के इलाके में करीब 6 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें गुजराती मूल के लोग बड़ी संख्या में हैं। न्यूजर्सी में एडिसन शहर के इस एक्सपो सेंटर में नवरात्रि के दिनों में हर सप्ताहांत रात भर गरबा डांडिया के कार्यक्रम होते हैं, जिनमें करीब 10,000 लोग शामिल होते हैं। इनमें भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ अमरीकी लोग भी शामिल होते हैं। एक अमरीकी युवती हरे रंग का गरबा का लिबास पहने, हाथों में डांडिया की छड़ी पकड़े अपने भारतीय मूल के दोस्तों के साथ नृत्य कर रही है। मार्था कह रही थी कि यहाँ पंडाल में नृत्य का बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ लोगों में ऊर्जा बहुत है। गुजराती मूल की हेतल वसोया न्यू जर्सी में गरबा नृत्य करना सिखाती है।
जो गुजरात से नहीं है उनको सिखाने के लिए हमें अच्छा लगता है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो यहाँ पे आके गुजराती लोगों के साथ गरबा खेले।
गरबा के पंडाल में प्रवेश के लिए $25 तक का टिकट लेना पड़ता है। सभी लोग गरबा के लिए विशेष कपड़े बनवाते हैं या रेडीमेड खरीदते हैं, जो $100 से $200 तक के भी मिलते हैं। गरबा की तैयारी में लगी जंखना अपनी बेटियों के साथ दर्जी की दुकान में गरबा के कपड़े लेने आई है।
कई खास शूटिंग चले छे? इतना मिल जाता है, मतलब तो भी दो लड़कियां हैं तो मेरा तो अराउंड लाइक 5,000 सर।
तो 5,000 कपड़े हो गए, और क्या क्या चीजें होती हैं?
ज्वेलरी रहती है, बैंगल्स वगैरह लाइक ऑल द स्टफ, और टिकट्स वगैरह वो मस्त है यहाँ।
दर्जी मीना बहुत खुश है कि नवरात्रि में सिलाई के बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं।
नवरात्रि में बहुत सारा बिजी रहते हैं, हम पूरे दिन वर्क रहता है, चनिया चोली मांगते हैं और केड़िया कुर्ता सलवार और सब कुछ, घाघरा कच्छी वर्क और वो सब ज्यादा चलते हैं अभी। ब्लाउज की जो भी पैटर्न बोलो वो सब पैटर्न हम करते हैं, डिजाइनर ब्लाउज बनाते हैं और डिजाइनर ड्रेसेस सब कुछ।
इस तरह नवरात्रि में कपड़े और जेवरात समेत कई चीजों की खरीदारी में कई परिवार हजारों डॉलर खर्च करते हैं। चाहे एक्सपो सेंटर जैसी जगह का महंगा किराया हो या भारत से संगीतकारों को बुलाया जाना हो, आयोजक कहते हैं कि बगैर प्रायोजकों के ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए $5,00,000 से ज्यादा खर्चा होता है। एक आयोजक नीलेश कहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम मुनाफा कमाने के लिए भी नहीं किए जाते।
प्रॉफिटेबल तो 99% नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट के लिए करते भी नहीं है।
नवरात्रि के कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक हजारों डॉलर देते हैं। इसके अलावा पंडाल के हॉल में विभिन्न खाने पीने के और अन्य व्यापार संबंधी स्टॉल्स भी हजारों डॉलर किराया देते हैं, लेकिन उनकी बिक्री भी अच्छी होती है। खाने पीने की स्टॉल पर गोलगप्पे बेचती हुई एक महिला कहती हैं। आयोजक कहते हैं कि वो इन कार्यक्रमों को इसलिए आयोजित करते हैं जिससे अमेरिका में पैदा हुई भारतीय मूल की युवा नस्ल को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने में मदद मिले और अगली पीढ़ी तक संस्कार भी पहुंचाए जा सकें। अमेरिका में पैदा हुए भारतीय मूल के युवा काफी उत्साहित भी दिखते हैं। सलीम रिजवी, एडिसन, न्यू जर्सी।
और अब नजर दौड़ाते हैं आज की खेल गतिविधियों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं डेनमार्क, जहां पर ओडेन शहर में बैडमिंटन में खेला जा रहा है डेनमार्क ओपन, और इस मुकाबले में भारत के लिए हैरान करने वाली खबर आई है। अपने पहले ही राउंड में महिला एकल प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु को अमेरिका के खिलाड़ी जांग बीविंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पीवी सिंधु 21-17, 16-21, 21-18 से अमेरिकी खिलाड़ी जांग बीविंग से हार गयी। हालांकि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में जहां पीवी सिंधु तीसरे स्थान पर हैं, तो वहीं अमेरिकी खिलाड़ी जांग बीविंग 12वें स्थान पर। इस मुकाबले के बाद जांग बीविंग की 11वीं रैंकिंग हो गई है। वहीं अपने पहले राउंड के मुकाबले में साइना नेहवाल ने हांगकांग के खिलाड़ी चेंग यांग यी को 20-22, 21-17 और 24-22 से हरा कर भारत की उम्मीद महिला एकल में जगाई हुई है। तो वहीं यूथ ओलंपिक्स की बात करें तो एथलीट सूरज पवार ने अपने नाम को सार्थक किया है और यूथ ओलंपिक्स में 5000 मीटर वॉक प्रतिस्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया है। वे इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट हैं। भारत के इस टूर्नामेंट में 14 पदक हो गए हैं, इसमें 4 गोल्ड और 10 रजत पदक शामिल है।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर सऊदी के पत्रकार जमाल खाशोजी की गुमशुदगी की वजह से दबाव बढ़ने लगा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आज सऊदी अरब पहुंचकर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। चीन ने पहली बार शिनजियांग प्रांत में रहने वाले करीब 10 लाख विगर मुसलमानों के लिए दोबारा शिक्षा की व्यवस्था से जुड़ी जानकारियां साझा की हैं। शिनजियांग की राज्य सरकार के प्रमुख शोहरत जाकिर ने बताया कि दोबारा शिक्षा से जुड़े इन कैंपों का मकसद चरमपंथ पर रोक लगाना है। फ्रांस के भ्रष्टाचार निरोधी दल ने वामपंथी पार्टी के प्रमुख जीन लुक मेकेन खोन के घर और पार्टी के मुख्यालय पर आज छापा मारा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।